डिप्टी कलेक्टरी कहानी का शेष अंश, पेज 109। उनकी उम्र 50 से ऊपर होगी। वह गोरे, नाटे और दुबले पतले थे। उनके मुख पर अनगिनत रेखाओं का जाल बुना था और उनकी बाहों तथा गर्दनों पर चमड़े झूल रहे थे। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने पंजे के बल खड़े हो होड़ दबाकर कमरे के अंदर झांका। उनका लड़का नारायण मेज पर रखी लालटेन के सामने सिर झुकाए ध्यानपूर्वक कुछ पढ़ रहा था। सकलदीप बाबू कुछ देर तक आँखों को साहचर्य फैलाकर अपने लड़कों को देखते रहे, जैसे किसी आनंददायी रहस्य का उन्होंने अचानक पता लगा लिया हो। फिर वह चुपचाप धीरे से पीछे हट गए और वहीं खड़े होकर जरा मुस्कुराए और फिर दबे पांव धीरे धीरे वापस लौटे और अपने कमरे के सामने ओसारे के किनारे खड़े होकर आसमान को उत्सुकतापूर्वक निहारने लगे। उनकी आदत 6 साढ़े 6 बजे से पहले उठने की नहीं थी, लेकिन आज उठ गए थे तो मन अप्रसन्न नहीं हुआ। आसमान में तारे अब भी चटक दिखाई दे रहे थे और बाहर के पेड़ों को हिलाती हुई और खपड़े को स्पर्श करके आंगन में ना मालूम किस दिशा से आती ताजी हवा उनको आनंदित एवं उत्साहित कर रही थी। वह पुनः मुस्कुरा पड़े और उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, चलो अच्छा ही है। और अचानक उनमें ना मालूम कहाँ का उत्साह आ गया। उन्होंने उसी समय ही दौतौन करना शुरू कर दिया। इन कार्यों से निपटने के बाद भी अंधेरा ही रहा तो बाल्टी में पानी भरा और उसे गुसलखाने में लेकर जाकर स्नान करने लगे। स्नान से निवृत्त होकर जब वह बाहर निकले तो उनके शरीर में एक अपूर्व ताजगी तथा मन में एक अवर्णनीय उत्साह था। यद्यपि उन्होंने अपने सभी कार्य चुपचाप करने की कोशिश की थी, तो भी देह दुर्बल होने के कारण कुछ खटपट हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी की नींद खुल गई। जमुना को तो पहले चोर बोर का संदेह हुआ, लेकिन उसने झटपट आकर जब देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। सकलदीप बाबू आंगन में खड़े खड़े आकाश को निहार रहे थे। जमुना ने चिंतातुर स्वर में कहा, इतनी जल्दी स्नान करने की जरूरत क्या थी? इतना सवेरे तो कभी भी नहीं उठा जाया जाता था। कुछ हो हवा गया तो? सकलदीप बाबू झेप गए, झूठी हंसी हंसते हुए बोले, धीरे धीरे बोलो भाई, बबुआ पढ़ रहे हैं। जमुना बिगड़ गई, धीरे धीरे क्यों बोलूँ? इसी लक्षण से परसाल बीमार पड़ जाया गया था। सकलदीप बाबू को आशंका हुई कि इस तरह बातचीत करने से तकरार बढ़ जाएगी, शोर शराबा होगा, इसलिए उन्होंने पत्नी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह पीछे घूम पड़े और अपने कमरे में जाकर लालटेन जलाकर चुपचाप रामायण का पाठ करने लगे। पूजा समाप्त करके जब वह उठे तो उजाला हो गया था। वह कमरे से बाहर निकल आए। पेज 110। घर के बड़े लोग तो जाग गए थे, पर बच्चे अभी तक सोए थे। जमुना भंडार घर में कुछ खटर पटर कर रही थी। सकलदीप बाबू ताड़ गए और वह भंडार घर के दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए और कमर पर दोनों हाथ रखकर कुतूहल के साथ अपनी पत्नी को कुंडे में से चावल निकालते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने प्रश्न किया, नारायण की अम्मा, आजकल तुम्हारा पूजा पाठ नहीं होता क्या? और झेप कर वह मुस्कुराए। सकलदीप बाबू प्रयाग में निवास करने वाले एक साधु बाबा से, जो एक बार पर्यटन करते हुए यहाँ आ पहुँचे थे, गुरुमुख हो गए थे। आशा उनको यह थी कि घर की औरतें भी उन्हीं बाबा से गुरुमुख हो जाएंगी, परंतु जैसा कहा जाता है, औरतों की जात का कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने दूर के रिश्ते की एक बुढ़िया चाची के प्रवचन से प्रभावित होकर चुपके से राधा स्वामी धर्म की दीक्षा ले ली। सकलदीप बाबू इसके पूर्व सदा राधा स्वामी वादियों पर बिगड़ते थे और मौका बेमौका उनकी कड़ी आलोचना भी करते थे। इसको लेकर औरतों में कभी कभी रोना पीटना तक भी हो जाता था। इसलिए आज भी जब सकलदीप बाबू ने पूजा पाठ की बात की तो जमुना ने समझा कि वह व्यंग कर रहे हैं। उसने भी प्रत्युत्तर दिया, हम लोगों को पूजा पाठ से क्या मतलब? हमको तो नरक में ही जाना है। जिनको स्वर्ग जाना है वह करें। लो, बिगड़ गई। सकलदीप बाबू मंद मंद मुस्कुराते हुए झट से बोले, अरे मैं मजाक थोड़े कर रहा था। मैं बड़ी गलती पर था। राधा स्वामी तो बड़े प्रभावशाली देवता हैं। जमुना को राधा स्वामी को देवता कहना बहुत बुरा लगा और वह तिनककर बोली, राधा स्वामी को देवता कहते हैं? वह तो परम पिता परमेश्वर हैं। उनका लोक सबसे ऊपर है। उनके नीचे ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के लोग आते हैं। ठीक है ठीक है, लेकिन कुछ पूजा पाठ भी करोगी? सुनते हैं सच्चे मन से राधा स्वामी की पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सकलदीप बाबू उत्तर देकर कांपते होठों में मुस्कुराने लगे। जमुना ने पुनः भूल सुधार किया, इसमें दिखाना थोड़े होता है, मन में नाम ले लिया जाता है, सभी मनोरथ बन जाते हैं और मरने के बाद आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, फिर 84 नहीं भुगतना पड़ता। सकलदीप बाबू ने सो उत्साह कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जरा और सवेरे उठकर नाम ले लिया करो। सुबह नहाने से तबीयत दिन भर साफ रहती है। कल से तुम भी शुरू कर दो। मैं तो अभागा था कि मेरी आंखें आज तक बंद रही। खैर कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कल से तुम भी सवेरे 4 बजे उठ जाना। उनको भय हुआ कि जमुना कहीं उनके प्रस्ताव का विरोध न करे, इसलिए इतना कहने के बाद वह पीछे घूमकर खिसक गए। लेकिन अचानक कुछ याद करके वह लौट पड़े। पेज 111। पास आकर उन्होंने पत्नी से मुस्कुराते हुए पूछा, बबुआ के लिए नाश्ते का इंतजाम क्या करोगी? जो रोज होता है वही होगा और क्या? उदासीनता पूर्वक जमुना ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन आज हलवा क्यों नहीं बना लेती? घर का बना सामान अच्छा होता है। और कुछ मेवे मंगा लो। हलवे के लिए घी नहीं है, फिर इतने पैसे कहाँ हैं? जमुना ने मजबूरी जाहिर की, 50 रुपये तो बचे हैं ना, उनमें से खर्च करो। अन्न जल का शरीर, लड़के को ठीक से खाने पीने को न मिलेगा तो वह इम्तहान क्या देगा? रुपए की चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। इतना कहकर सकलदीप बाबू ठहाका लगाकर हंस पड़े। वहाँ से हटने के पूर्व वह पत्नी को यह भी हिदायत देते गए, एक बात और करो, तुम लड़के लोगों से डांटकर कह देना कि वे बाहर के कमरे में जाकर बाजार न लगाएं, नहीं तो मार पड़ेगी। हाँ, पढ़ने में बाधा पहुँचेगी। दूसरी बात यह कि बबुआ से कह देना वह बाहर के कमरे में बैठकर इम्तिनान से पढ़े, मैं बाहर सहन में बैठ लूँगा। सकलदीप बाबू सवेरे 1-1.5 घंटे कमरे के बाहर बैठते, वहाँ वह मुवक्किलों के आने की प्रतीक्षा करते और उन्हें समझाते बुझाते। और वह उस दिन सचमुच ही मकान के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर्याप्त छाया रहती थी, एक मेज और कुर्सियाँ लगाकर बैठ गए। जान पहचान के लोग वहाँ से गुजरे तो उन्हें वहाँ देखकर आश्चर्य हुआ। जब सड़क से गुजरने वाले बब्बन लाल पेशकार ने उनसे पूछा कि भाई साहब क्या बात है, तो उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा कि भीतर बड़ी गर्मी है, और उन्होंने जोकर की तरह अपना मुंह बना दिया और अंत में ठहाका मारकर हंस पड़े, जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक कर दिया हो। शाम को जहाँ रोज वह पहले ही कचहरी से आ जाते थे, उस दिन देर से लौटे। उन्होंने पत्नी के हाथ में 4 रुपए तो दिए ही, साथ ही 2 सेब तथा कैची सिगरेट के 5 पैकेट भी बढ़ा दिए। सिगरेट क्या होगा? जमुना ने साश्चर्य पूछा। तुम्हारे लिए हैं, सकलदीप बाबू ने धीरे से कहा और दूसरी ओर देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उनका चेहरा शर्म से कुछ तमतमा गया। जमुना ने माथे पर की साड़ी को नीचे खींचते हुए, कभी सिगरेट भी पी है कि आज पीऊंगी? इस उम्र में मजाक करते लाज नहीं आती? सकलदीप बाबू कुछ बोले नहीं और थोड़ा मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगे। फिर गंभीर होकर उन्होंने दूसरी ओर देखते हुए धीरे से कहा, बबुआ को दे देना। और वह तुरंत पेज 112। जमुना भौचक होकर कुछ देर उनकी ओर देखती रही, क्योंकि आज के पूर्व तो वह यही देखती आ रही थी कि नारायण के धूम्रपान के वह सख्त खिलाफ रहे और इसको लेकर कई बार लड़के को डांट डपट चुके थे। उनकी समझ में कुछ न आया तो वह यह कहकर मुस्कुरा पड़े कि बुद्धि सठिया गई है। नारायण दिन भर पढ़ने लिखने के बाद टहलने गया हुआ था। सकलदीप बाबू जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ में झाड़ू ले बाहर के कमरे में जा पहुँचे। उन्होंने धीरे धीरे कमरे को अच्छी तरह झाड़ा बुहारा। इसके बाद नारायण की मेज को साफ किया तथा मेजपोश को जोर जोर से कई बार झाड़ फटक कर सफाई के साथ उस पर बिछा दिया। अंत में नारायण की चारपाई पर पड़े बिछौने को खोलकर उसमें की एक-एक चीज को झाड़ फटकार कर यत्नपूर्वक बिछाने लगे। इतने में जमुना ने आकर देखा तो विद्युत स्वर में कहा, कचहरी से आने पर यही काम रह गया है क्या? बिछौना रोज बिछ ही जाता है और कमरे की मोहसिन सफाई कर ही देती है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी तबीयत से कर रहा हूँ, और कोई जबरदस्ती थोड़ी है। सकलदीप बाबू के मुख पर हल्के झेप का भाव अंकित हो गया था और वह अपनी पत्नी की ओर न देखते हुए ऐसी आवाज में बोले जैसे उन्होंने अचानक यह कार्य आरंभ कर दिया था, और जब इतना कर ही लिया है तो बीच में छोड़ने से क्या लाभ, पूरी ही कर लें। कचहरी से आने के बाद रोज का यह उनका नियम था कि वह कुछ नाश्ता पानी करके चारपाई पर लेट जाते थे। उनको अक्सर नींद आ जाती थी और वह लगभग 8 बजे तक सोते रहते थे। यही नींद न भी आती तो भी वह इसी तरह चुपचाप पड़े रहते थे। नाश्ता तैयार है, यह कहकर जमुना वहाँ से चली गई। सकलदीप बाबू कमरे को चमाचम करने, बिछौना लगाने तथा कुर्सियों को तरतीब से सजाने के पश्चात आंगन में आकर खड़े हो गए और बेमतलब ठनक कर हंसते हुए बोले, अपना काम सदा अपने हाथ से करनी चाहिए, नौकरों का क्या ठिकाना। लेकिन उनकी बात पर संभवतः किसी ने ध्यान नहीं दिया और न उसका उत्तर ही। धीरे धीरे दिन बीतते गए और नारायण कठिन परिश्रम करता रहा। कुछ दिनों से सकलदीप बाबू सायकाल घर से लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित शिव जी के एक मंदिर में भी जाने लगे थे। वह बहुत चलता मंदिर था और उसमें भक्तजनों की बहुत भीड़ होती थी। कचहरी से आने के बाद वह नारायण के कमरे को झाड़ते बुहारते, उसका बिछौना लगाते, मेज कुर्सियां सजाते और अंत में नाश्ता करके मंदिर के लिए रवाना हो जाते। मंदिर में 1-1.5 घंटे तक रहते और लगभग 10 बजे घर आते। एक दिन जब वह मंदिर से लौटे तो 10:30 बज गए थे। उन्होंने दबे पांव ओसारे में पांव रखा और अपनी आदत के अनुसार कुछ देर तक मुस्कुराते हुए झाँक झाँक कर कोठरी में नारायण को पढ़ते हुए देखते रहे।